अगला शीर्षक है केशव दास और इसे लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। केशव शनाढ्य ब्राह्मण कृष्ण दत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। इनका जन्म संवत 1612 में और मृत्यु 1674 के आसपास हुई। ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में ये रहते थे, जहां इनका बहुत मान था। इनके घराने में बराबर संस्कृत के अच्छे पंडित होते आए थे। इनके बड़े भाई बलभद्र मिश्र भाषा के अच्छे कवि थे। इस प्रकार की परिस्थिति में रहकर ये अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्रज्ञ कवि माने गए। इनके आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि हिंदी काव्य रचना प्रचुर मात्रा में हो चुकी थी। लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता है। केशवदास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी। केशवदास के पहले संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे। इसी समय में चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगार रस संबंधी लिखा। नरहरि कवि के साथ अकबरी दरबार में जाने वाले कर्णेश कवि ने कर्णाभरण श्रुति भूषण एवं भूप भूषण नामक तीन ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे, पर अब किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरुपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम केशवदास ने किया। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कार कवि थे, जैसे कि इन्होंने स्वयं कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षिणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न बिराजई कविता बनीता मित। अपनी इसी मनोवृत्ति के अनुसार इन्होंने भामह उद्भट और डंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया, जो रस रीति आदि सब कुछ अलंकार के ही अंतर्गत लेते थे। साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप में लाने वाले मम्मच आनंद वर्धनाचार्य और विश्वनाथ का नहीं। अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके इन्होंने इसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं वर्णन के विषय भी ले लिए थे। अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही हैं। अलंकारों के लक्षण इन्होंने डंडी के काव्यादर्श से तथा और बहुत सी बातें अमर रचित का विकल्प लता वृत्ति और केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर से ली है। पर केशव के 50 या 60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर रही और अलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रालोक और कुवल्यानंद का अनुसरण किया। इसी से केशव के अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार लक्षणों से नहीं मिलते। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखी। इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती है। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेरफेर मिलता है, जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं है। उप्पा के जो 22 भेद केशव ने रखे हैं उनमें से 15 तो ज्यों के त्यों डंडी के हैं, 5 के केवल नाम भर बदल दिए गए हैं। शेष रहे 2 संकीर्णोपमा और विपरीतोपमा। इनमें विपरीतोपमा को तो उपमा कहना ही व्यर्थ है। इसी प्रकार आक्षेप के जो 9 भेद केशव ने रखे हैं उनमें 4 तो ज्यों के त्यों डंडी के हैं, 5वां मरणाक्षेप डंडी का मूर्छाक्षेप ही है। कविप्रिया का प्रेमालंकार डंडी के प्रियस का ही नामांतर है। उत्तर अलंकार के 4 भेद वास्तव में पहेलियां हैं। कुछ भेदों को डंडी से लेकर भी केशव ने उनका और का और ही अर्थ समझा है। केशव के रचे 7 ग्रंथ मिलते हैं, कवि प्रिया रसिक प्रिया रामचंद्रिका वीर सिंह देवरचित विज्ञान गीता रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त ना था। अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियाँ लेकर भरी हैं। पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता और सख्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भाषा भी अप्रांजल और उबड़ खाबड़ हो गई है और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका है। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है, उसका प्रधान कारण उनकी यही त्रुटि है, उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं। रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमन्नाटक, अनर्घ राघव, कादंबरी और नैषधीय की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया है। कहीं कहीं अनुवाद अच्छा न होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है, जैसे प्रसन्न राघव के प्रियतम पदय किंतान भूमि भाव गमान का अनुवाद प्यव पद पंकज ऊपर करके केशव ने उक्ति को एकदम बिगाड़ डाला है। हाँ, जिन उक्तियों में जटिलता नहीं है, समास शैली का आश्रय नहीं लिया गया है, उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत सफलता प्राप्त है, जैसे भरत के प्रश्न और केकई के उत्तर में मातु कहाँ नृप्तात् गए सुर लोकहीं क्यों सुत शोक लय, जो कि हनुमान नाटक के एक श्लोक का अनुवाद है। केशव ने दो प्रबंध काव्य लिखे, एक वीर सिंह देवचरित, दूसरा रामचंद्रिका। पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता, इसमें वीर सिंह देव का चरित्र तो थोड़ा है, दान लोभ आदि के संवाद भरे हैं। रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्त रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। प्रबंध काव्य के लिए तीन बातें अनिवार्य हैं: संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों की संग्रह से जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण ही उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पर पदों से अलग सूचित करने पड़े हैं। दूसरी बात भी केशव में बहुत कम पाई जाती है। रामायण की कथा का केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो, यह बात नहीं पाई जाती। उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम की कथा ले ली। उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल हैं, उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम हो गया है। वे ऐसे स्थल को या तो छोड़ गए हैं और यूं ही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिए हैं। राम आदि को वन की ओर जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों से कुछ कहलाया भी तो यह कि किंधो मुनि साप रत किंधो को ठग हो। ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता है। इसका अनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के लिए कठिन था। दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। पहली बात तो यह कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था, वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते। दूसरी बात यह कि केशव के बहुत पहले से ही इसकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य वर्णनों में देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता है वह भवभूति तक तो कुछ रहा, उसके पीछे नहीं। फिर तो वर्णन रूढ़ हो गए। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। अपनी इस मनोवृत्ति का आभास उन्होंने यह कहकर कि देखे मुख भाव है अन देखई कमल चंद ताते मुख मुख है सखी कमलौन चंदरी। साफ दे दिया है, ऐसे व्यक्ति से प्राकृत दृश्यों के सच्चे वर्णन की भला ही क्या आशा की जा सकती है। पंचवटी और प्रवर्सनगिरी जैसे रमणीय स्थलों में शब्द सामी के आधार पर श्लेष के एक भद्दे खिलवाड़ के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा। केशव द्वारा शब्द सामी के सहारे जो उपमान लाए गए हैं, वे किसी रमणीय दृश्य से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति के सर्वथा विरुद्ध या बेमेल हैं। जैसे प्रलय काल, पांडव, सुग्रीव, शेषनाग, सादृश्य या साधर्म की दृष्टि से दृश्य वर्णन में जो उपमाएं, उत्प्रेक्षाएं आदि लाई गई हैं, वे भी सौंदर्य की भावना में वृद्धि करने के स्थान पर कुतूहल मात्र उत्पन्न करती हैं। जैसे श्वेत कमल के छत्ते पर बैठे हुए भौरे पर यह उक्ति केशव केशव राय मनो कमलासन के सिर ऊपर सोहे, पर कहीं कहीं रमणीय और उपयुक्त उपमान भी मिलते हैं, जैसे जनकपुर के सूर्योदय वर्णन में, जिसमें कापालिक काल को छोड़कर और सब उपमान रमणीय हैं। सारांश यह कि प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी और न शक्ति। परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विषयों के, जैसे युद्ध, सेना, तैयारी, उपवन, राज दरबार के ठाट बाट तथा श्रृंगार और वीरस, फुटकर वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ करना भी जानते थे। इसी से बहुत से वर्णन यों ही बिना अवसर का विचार किए वे भरते गए हैं। ये वर्णन वर्णन के लिए करते थे, ना कि प्रसंग या अवसर की उपेक्षा से। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित अनुचित की परवाह नहीं की है, जैसे भरत की चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क भड़क का वर्णन। अनेक प्रकार के रूखे सूखे उपदेश भी बीच बीच में रखना वे नहीं भूलते थे। दान महिमा लोभ निंदा के लिए तो वे प्रायः जगह निकाल लिया करते थे। उपदेशों का समावेश दो एक जगह तो पात्र का बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और भद्दे रूप से किया गया है, जैसे वन जाते समय राम का अपनी माता कौशल्या को पातिव्रत का उपदेश। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णन को देखने पर से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्षों पर न थी। उनका मन राशि, ठाट बाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में ही विशेषता लगता है। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो भावों की प्रकृत व्यंजना के लिए जगह बसती है और ना ही सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं, कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल हैं, जैसे राम की वियोग दशा के वर्णन में यह वाक्य, बासर की संपत्ति उलुक क्यों न चितवत। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है संवादों में। इन संवाद में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है, जैसे लक्ष्मण राम, परशुराम संवाद तथा लव कुश के प्रसंग के संवाद, तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांवपेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। रामचंद्रिका और कवि प्रिया दोनों का रचना काल कवि ने 1658 दिया है, केवल मास में अंतर है। रसिक प्रिया की रचना प्रौढ़ है, उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पद विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग वैदग्ध्य के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। विज्ञान गीता संस्कृत प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है। रतन बावनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रत्न सिंह की वीरता का छप्पे में अच्छा वर्णन है। यह वीर रस का अच्छा काव्य है। केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सी सरसता और तन्मयता चाहे ना हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। कहते हैं वे रसिक जीव थे। एक दिन बूढ़े होने पर किसी कुएं पर बैठे थे, वहां स्त्रियों ने बाबा कहकर संबोधन किया। इस पर इनके मुंह से यह दोहा निकला, केशव केसनी अस करी, बैरहु जसन कराही, चंद्र बदनी मृग लोचनी, बाबा कही कही जाही। केशव की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। जो हों कहव रहिए तो प्रभुता प्रकट होती, चलन कहो तो हित हानि नहीं सहनो, भावे सो करहु तो उदास भाव प्राणनाथ, साथ ले चलहु कैसे लोक लाज बहनो। केशव दास की सौ तुम सुनहु छबीले लाल, चले ही बनत जो पै नाही आज रहनो, जैसिए सिखाओ सिख तुम्ही सुजान प्रिय, तुम ही चलत मोही जैसा कुछ कहनो। चंचल न हुजय नाथ, अंचल न खेचो हाथ, सोवे नेक सारिकाऊ, सूक तू सोवायो जू, मंद करो दीप दुति, चंदमुख देखियत, दारिके दुराय आऊ द्वार तो दिखायो जू। मृगज मराल बाल बाहिर, बिजारी देऊ भायो, तुम्हें केशव सौ मोहु मन भायो जू। छल के निवास ऐसे बचन विलास सुनी, सौ गुनी सूरत हूँ ते श्याम सुख पायो जू। कैटव सो नरकासुर सो पल में मधु सो मुरसो जिन मार्यो, लोक चतर दुस रक्षक केशव पूरन वेद पुराण विचार्यो। श्री कमला कुछ कुंकुम मुंडित मुंडन मुंडित, पंडित देव अदेव निहार्यो, सोकर मांगन की बलि पै करताहु ने करतार पसार्यो। रामचंद्रिका से अरुण गात अति प्रीत पद्मनी प्राणनाथ में, मानहु केशव दास कोक नद कोक प्रेम में। परिपूरन सिंदूर पूर कंधौ मंगल घट, किंधौ शक्र कुछत्र मढ़्यो मानिक मयूख पट। कै सोनित कलित कपाल यह दिल कापालिक काल को, यह ललित लाल कैंधौ लसत दिग भामिनी के भाल को। विधि के समान है विमानी कृत राजहंस, विविध विबुद्ध युत मेरु सो अचल है। दिपति दिपति अति सातव दीप देखियत, दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। सागर उजागर सो बहु बाहिनी को पति, छन दान प्रिय कैंधौ सूरज अमल है। सब विधि समरथ राजय राजा दशरथ, भागीरथ पथगामी गंगा कैसो जल है। मूलन ही की जहां अधोगति केशव गाइये, होम हुतासन धूम नगर एकै मलिनाइये। दुर्गति दुर्गन ही जो कुटिल गति सरितन ही में, श्रीफल की अभिलाषा प्रकट कवि कूल के जी में। कुंतल ललित नील भ्रकुटी धनुष नयन, कुमुद कटाक्ष बान सबल सदाई है। सुग्रीव सहित तार अंगदादि भस्नन, मध्य देश केसरी सूजग गति भाई है। विग्रहानुकूल सब लच्छ लच्छ स्विच बल, स्विच राजमुखी कैसो दास गाई है। रामचंद्र जू की चमु राजश्री विभीषण की, रावण की मीचू दर कुचिक चली आई है। पढ़ो विरंची मौन वेद जीव सोर छंडी रे, कुबेर बेर के कही ना जच्छ मीर मंडी रे। दिनेश जाई दूर बैठू नारदादी संग ही, ना बोलू चंदमंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। तो ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित केशव दास।